$12 अरब कर्ज मंजूरी दी है जो आइंदा 5 सालों में एक साथ की सूरत में दिए जाएंगे। वजारत खजाना के मुताबिक $1 अरब तवानाई और रेवेन्यू स्पोर्ट की मद में मंजूर किया गया जबकि $11 अरब दीगर मंसूबों के लिए मंजूर किए गए हैं। बयान में कहा गया कि इस कर्ज को तवानाई के हसूल और तालीम के फरोग समेत दीगर मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक वर्ल्ड बैंक से $1 अरब आइंदा चंद हफ्तों में पाकिस्तान को मिल जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक आसान शरायत पर मिलने वाले इस कर्ज पर सालाना 2% सूद होगा। पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना और मुआशी अमूर के माहिर सलमान शाह ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु में कहा कि मुल्क के मौजूदा मुआशी हालात को देखते हुए ये रकम इंतहाई आम है
क्योंकि पिछले चंद सालों में वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग कम हुई हुई थी तो वो अब एक बैकलॉग भी है और एक ट्रेडिशनल रेट से 2 बिलियन का पर ईयर का भी अगर आप करें तो उस लिहाज से तो ये अप्रोप्रिएट अमाउंट बनती है। सो आई थिंक के अगर इससे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं आई डोंट नो कि इसमें बजटरी सपोर्ट भी होगी शायद जो कि रिफॉर्म्स इकोनॉमी को चाहिए उसके लिए भी काम किया जाए एनर्जी रिफॉर्म्स भी इसमें आए तो आई थिंक इट कैन हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी।
सलमान शाह का कहना था कि आलमी मालियाती फंड यानी IMF से भी पाकिस्तान को कर्ज मिल रहा है और उनके बकौल अगर IMF की तरफ से किसी मुल्क की मुईशत पर एतमाद का इजहार किया जाए तो दीगर मालियाती इदारों से कर्ज के हसूल में मुश्किल नहीं होती।
अगर IMF की सपोर्ट नहीं होगी और IMF अगर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है आपकी परफॉर्मेंस से तो फिर इन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी बोर्ड लेवल में क्योंकि वो IMF को बाईपास नहीं कर सकते। सो आई थिंक क्योंकि हमारे पास एक IMF प्रोग्राम भी है और एक रिफॉर्म का एजेंडा भी है और ये पैसे जो हैं वो अगर डिस्पर्स होते हैं प्रोग्राम लोन्स के लिए या प्रोजेक्ट लोन्स के लिए भी और वो रिफॉर्म के साथ मुंसलिक हैं तो फिर वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर साबित होंगे।
वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत का कहना है कि वो मुईशत की बहाली के लिए सरगर्म अमल है और इस ज़िम्न आलमी मालियाती इदारों से आसान शरायत पर कर्ज के हसूल के अलावा अंदरून मुल्क टैक्स महसूलात में इजाफे की भी कोशिशें की जा रही हैं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
भारत की शिमाल मशरकी रियासत आसाम में अस्करी पसंदों ने हमला करके कम से कम 22 अफराद को हलाक कर दिया जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। इस बारे में तफसीलात नई दिल्ली से सुहेल अंजम की रिपोर्ट में।
आसाम के बोडोलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया के 2 अजला में ममनुआ तंजीम नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB के मुसल्लह दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 11 अफराद हलाक और 3 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। हलाक शुदगान में 3 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ममनुआ तंजीम के 20-25 दहशतगर्दों ने जो कि AK-47 राइफलों से लैस थे कोकराझार जिला के एक गांव के 3 घरों पर हमला कर दिया। उनकी अंधाधुंध फायरिंग में 7 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। IGP RL बिश्नोई ने नामा निगारों को बताया कि हलाक शुदगान में अकलियती फिरका के 2 बच्चे और 4 औरतें भी शामिल हैं। यह हमला जुमा के रोज अलसबाह किया गया जबकि जुमेरात की शब में अस्करियत पसंदों ने बक्सा जिला के एक गांव में हमला किया जिसमें 4 अफराद मारे गए। पुलिस ने शुबह जाहिर किया है कि ये हमले बोडोलैंड इलाका में चलाए जा रहे शोरिश पसंदी मुखालिफ ऑपरेशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा हो सकते हैं। आसाम के होम कमिश्नर GD त्रिपाठी के मुताबिक सरीउल हरकत फोर्स की 6 टीमें धुबरी, कोकराझार और बक्सा अजला में तैनात कर दी गई हैं। दरियसना अकलेती तलबा की तंजीमों आल माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन और आल बोडो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन और दीगर तंजीमों ने इन हमलों की मजम्मत की है और आवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की है। अकलियती तलबा की अंजुमनों ने वजीर आला तरुण गोगोई पर बोडोलैंड एरिया के 4 अजला में नज्म व नस्क के क्याम में नाकाम रहने का इल्जाम आयद किया है। होम कमिश्नर ने बताया कि नीम मुसल्ले दस्तों की इजाफी कंपनियां भेजने के लिए रियासती हुकूमत मरकज को खत लिख रही है। उस इलाके में बांग्लादेश से आए बहुत से बंगाली खानदान पनाहगुजी हैं। July 2012 में मकामी बोडो आबादी और पनाहगुजीनों के माबेन तशद्दुद भड़क उठा था जिसके नतीजे में 80 अफराद हलाक हुए थे। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
बर्रे सगीर के नामवर शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल्ला खान के खानदान को भारत में एक सियासी तनाजे में मुलव्वस किया गया। हमारे साथी दीपक धोबाल ने बताया कि ऐसा क्यों हुआ।
जब मैं भारत के शहर दिल्ली में बड़ा हो रहा था तो हर 15 अगस्त को, जो कि भारत का इंडिपेंडेंस डे है, उसकी शुरुआत दूरदर्शन पर बिस्मिल्ला खान साहब की शहनाई से हुआ करती थी। और बिस्मिल्ला खान साहब एक सिंबल थे भारत की, जो गंगा जमनी तहजीब है उसकी। इस वक्त हम लोग हैं बिस्मिल्ला खान के तीसरे बेटे जामिन हुसैन खान साहब के पास, जिनको कि मोदी ने अप्रोच किया था ये कहने के लिए कि वो उनके नॉमिनेशन जो पेपर्स हैं उसमें एक सिग्नेटरी बने, यानी उनके प्रस्तावक बने, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। क्या वजह थी इनकार करने की, ये उनसे पूछते हैं। लेकिन सबसे पहले बनारस में हम लोग हैं, बनारस की आपने अभी हमें एक बंदिश सुनाई थी जिससे कि पूरा हम बनारस को जान सकते हैं, उससे शुरुआत करते हैं।
गंगा द्वारे बधैया बाजे, गंगा द्वारे बधैया बाजे, गंगा द्वारे बधैया बाजे, गंगा द्वारे बधैया बाजे, गंगा द्वारे।
बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि ये सब सिलसिला, जो ये पूरी की पूरी खबर आई तो हुआ क्या, किसने आपको मोदी जी की तरफ से कहा कि आप प्रस्तावक बने?
ये दिल्ली से 20-25 दिन पहले हमारे यहाँ फोन आया हेमंत शर्मा साहब का कि आपको मोदी साहब का प्रस्तावक बनना है। तो हमने फ़ोन पर भी, मोबाइल पर ही कह दिया कि हम प्रस्तावक नहीं बनेंगे। तो फिर मुझे हफ्ते धंधे के बाद राम गोपाल मोदी साहब यहाँ के मेयर हैं, उन्होंने बुलाया। तो हमने समझा, मेरे बेटे आफाक भी कहते हैं, आफाक हैदर भी कहते हैं साथ में, तो हमने समझा कोई प्रोग्राम कोई कार्यक्रम है उसी की बात करेंगे। तो हमने उनसे पूछा कि कौन सी तारीख का प्रोग्राम है, कहीं प्रोग्राम नहीं है, वो मोदी साहब का प्रस्तावक बनना है आपको।
लेकिन तब तक टीवी पर ये खबर आ चुकी थी कि आप उनके प्रस्तावक बनने के लिए तैयार हो गए।
हाँ, ये खबर टीवी पर शायद आ चुकी थी कि हम प्रस्तावक उनके बने जा रहे हैं। तो हमने उनको इनकार कर दिया, उनके मेयर साहब को भी, तो और बड़े लोगों से, अपने जो बड़े हैं उनसे भी हमने राय मशवरा किया। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, खान साहब राजनीति में नहीं थे और आप भी राजनीति में नहीं हैं, आप संगीत से के हैं, कलाकार हैं, संगीत से ही हैं। मोदी साहब हमारे मेहमान हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, यही हम कह सकते हैं।
अच्छा ये बताइए, मोदी जी के अलावा अगर आपको कांग्रेस या कोई और पार्टी बुलाती और कहती कि हमारे प्रस्तावक बनिए, तो क्या आप बनते?
नहीं, कोई भी पार्टी बुलाएगी प्रस्तावक के नाते प्रस्तावक नहीं बन सकते।
अच्छा ये बताइए कि अगर मोदी साहब देश के वज़ीर आज़म बनते हैं और वो आपको बुलाया जाता है शहनाई बजाने के लिए, तो आप बजाएंगे?
अगर मोदी साहब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हम खुशी में उनके यहाँ बुलाएंगे, तो हम शहनाई बजाने ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हम कलाकार शहनाई से ही, हम तो हर पार्टी में जाकर बजाया है। सब अब्बा हुजूर बजाते थे, सपा में बजाया है, बसपा के लोग बजाते थे, कांग्रेस वाले लोग बजाते थे, और आज बीजेपी वाले बजाया है। तो बजाज प्रोग्राम के लिए जाते थे और हम भी प्रोग्राम के लिए आज भी जाते हैं। हमारा अभी 26 तारीख को प्रोग्राम था बीजेपी वालों का, वो प्रोग्राम हमने किया।
बनारस की जो जिस गंगा जमनी तहजीब के बहुत बड़े सिंबल बिस्मिल्ला खान साहब थे, उसके बारे में बताइए ज़रा, क्या है वो गंगा जमनी तहजीब?
हम लोग भी बचपन में अब्बा के साथ बालाजी मंदिर पर जाते थे, तो उनके साथ वो नहाते पीते वहीं, मंदिर घाट है वहाँ का, और वो रियाज भी करते, तो हम लोग को भी सिखाते थे मंदिर में भी। तो हम यही बचपन से देखते हुए आ रहे हैं।
हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी जुब्बा में हैं और वो जुनूबी सूडान के सदर सलवा कीर और इनके साबिक नायब सदर राइक माशार के दरमियान, जो इस वक्त एक बागी रहनुमा हैं, बिल मुशाफा मुलाकात कराने की कोशिश कर रहे हैं। महकमा खारजा के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे स्कॉट स्टर्न्स की रिपोर्ट, सादिया असद की जबानी।
अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी और जुनूबी सूडान के सदर कीर के दरमियान जुमे की मुलाकात 4 घंटे से ज्यादा देर तक जारी रही, जिसका मकसद अगले हफ्ते एथोपिया के दारुल हुकूमत में होने वाले अमन मुजाकरात की मनसूबाबंदी था। मुजव्वजा मुजाकरात में मिस्टर मशार शरीक होंगे, जिनके बारे में वजीर खारजा कैरी का कहना है कि वो उनके साथ एक बार फिर फोन पर बात करेंगे। सदर कीर और रियक मशार के दरमियान ये मुलाकात दोनों रहनुमाओं की अहलियत के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि वो इख्तलाफात के खात्मे से मुतालिक मुआहदे को एक बार फिर हकीकी मायनों में सब के लिए नाफिज करने का काम सरंजाम देते हैं, और किस तरह एक अबूरी हुकूमत के सिलसिले में मुजाकरात के जरिए इसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये अल्फाज थे मिस्टर जॉन कैरी के। جنوبی سوڈان میں کیر کی حکومت کی جانب سے مسٹر مشار پر اقتدار پر قبضے کی کوشش کا الزام لگائے جانے